ओम शांति। हम लोग भाग्यशाली क्यों हैं? बाबा मिले और सभी एक एक बात सुनाई, हमें चिट चैट अच्छा लगता है, परिवार मिला और महावाक्य हम रोज मिलते हैं, मधुबन में सेवा करने का चांस मिलता है और बाबा की पालना मिलती है। जो भी यहाँ बैठे हैं और जो भी सुन रहे हैं उनका एक और भाग्य है जो हमारा नहीं है, पता है कौन सा है? आप सब भारत देश में पैदा हुए थे, है ना? ये तन और आत्मा भी भारत के बाहर पैदा हुआ और बचपन से ही बहुत इच्छा थी कि भारत में रहना है, इंडिया में रहना है। कितने लोग यहाँ छोड़ के विदेश जाना चाहते हैं, अभी भी बीकेस को भी बोलो, हाँ वहाँ सब कुछ अच्छा मिलता है। वो असलियत क्या है वो तो हम सबको पता है। हाँ जी, तो आप सबका डबल भाग्य भारत में पैदा होने का, पहले बहुत लगता था, अभी तो बाबा ने यही बिठा दिया इसलिए खुशी है। भारत की विशेषताएं सबको पता ही है और इस समय जो 8 नवंबर से जो तहलका मच गया भारत में नोटबंदी का, वो सब क्यों हो रहा है? अकॉर्डिंग टू ड्रामा और नई दुनिया आ रही है ना। देखो बाबा कितना हमें सेफ रख रहा है कि नई दुनिया के लिए हमें तैयार भी कर रहा है, लेकिन इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही जो सरकार को करनी पड़ रही, इनकम टैक्स वालों को करनी पड़ रही है, बैंक वालों को करनी पड़ रही है। अब सोचो एक डेढ़ मास से उनका सब कारोबार 12-12 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भारत स्वच्छ बने, भारत फिर से पवित्र बन जाए। तो सब हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमें नशा है कि हम कहाँ के रहवासी हैं। बाहर जब मीडिया में भारत की बातें कभी जिक्र करते हैं तो अच्छी बातें भी सुनाते हैं, लेकिन जो भी होता है कुछ नेगेटिव बातें ज्यादा होती हैं। हम लोग अपनी बुराई करते हैं वो तो अलग बात है, इंडिया में ये है, पोल्यूशन है, करप्शन है, सब कुछ है, लेकिन बाहर वाले बीच बीच में करते रहते हैं। लेकिन इन्हीं दिनों में जब से ये नोटबंदी हुई तो एक वीडियो निकली थी, एक शायद रशियन की बहन है, शायद उसने यहाँ किसी से शादी की होगी तो उसका लास्ट नेम गोस्वामी है, लेकिन पूरी रशियन ही है और साड़ी पहनती है और इतना भारत से प्यार है। आप सोचो आप और हम शायद इतना ना प्यार करें, और कितनी विशेषताएं, नॉन बी के हैं, कितनी विशेषताएं सुना रही हैं भारत की। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत को कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि हम दूसरे देश में जाके वहां की खामियां को हम वर्णन करें या यहां आके मीडिया में सुनाएं। मेजॉरिटी भारत वाले ऐसे नहीं करते हैं, विदेश वाले करते हैं, वो आके यहां डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, देखो क्या हालत है, गरीबी कैसी है, ये है वो है, अच्छी भी बात सुनाते, लेकिन जो अच्छा काम करते वो गुप्त रीति से करके जाते हैं, लेकिन जो वर्णन में आता है कि ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमने बात बहुत कम सोची है कि भारत को दूसरों को गिरा के अपने आप को उठाना नहीं पड़ता है, है ना? और दूसरी भी बात, जब हम बड़े हो रहे थे इंडिया के बाहर तो ये भी बात देखी कि जब तक भारत किसी विदेश का एक स्टैम्प ना लग जाए ना कि भारत में ये अच्छा है वो अच्छा है, वो अपने आप को इतना अच्छा नहीं मानता है। कई बार होता है ना, जो घर के बाहर रहते हैं अगर उनसे सम्मान मिलता है तो माना हम कुछ हैं, घर वाले कुछ कहे इतना मान नहीं। जो कहते हैं ना कि संत अपने गांव में नहीं पहचाना जाता है। तो एक और बात जो बहुत अच्छी लगती है मुझे भारत की, यहाँ की मेहमान नवाजी, अतिथि देव भाव, अभी तक 5000 साल के बाद भी ये प्रथा चली आती है। जो हमारे घर में आते हैं, भले गरीब के घर में क्यों ना जाएं, वो भूखा रहेगा लेकिन आपको दूध पिलाएगा, चाय पिलाएगा, कुछ तो पिलाएगा, ऐसे खाली हाथ आपको जाने नहीं देगा अभी तक। ये और देशों में कम नजर में आता है। वो लोग बहुत इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, मेजोरिटी, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। आप जाओ वो किचन दिखाएंगे, अच्छा आपको बनाना हो आप खुद बनाओ, ये सब चीजें हैं आप खुद बनाओ। कई बार हमारे सीनियर्स भी जाते हैं तो भी वही हाल है। तो अभी तक जो संस्कार बाबा ने 5000 साल पहले डाले थे इस धरनी पे, अभी तक वो चला आ रहा है। लेकिन कहीं हमें लगता है कि ये जो स्वमान और सम्मान देने की जो बात है उसका थोड़ा असंतुलन हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। हम दूसरों को मान देते हैं, कभी कभी खुद को इतना मान नहीं देते, या उल्टा होता है। अपने अभिमान में ज्यादा रहते हैं लेकिन सम्मान नहीं दे पाते हैं। जब बाबा आए यहाँ पे तो सबसे पहले हम सभी आत्माओं को अपना स्वमान वापस दिलाया। लेकिन समय लगता है उसको मजबूत करने का, उसको कार्य में लगाने का। लेकिन जब तक वो बैलेंस नहीं रहता अपने लाइफ में कि मैं स्वमान में रहूं और मैं सम्मान दू, तब तक हम सफल नहीं रहते अपने लाइफ में। तो भारत की ये बात है, सम्मान देता है, बाहर वालों को बहुत सम्मान देता है। जैसे हमने कहा आपस में हम झगड़ा करते रहेंगे लेकिन कोई बाहर वाला आता है, मधुबन में भी कई बार दादी जी ये क्लास में सुनाती हैं, हम आपस में झगड़ा करेंगे लेकिन कोई मेहमान आता है तो तुरंत ही सब माहौल चेंज हो जाता है, सबको लगता है यहाँ तो सब शांति और प्रेम से रहते हैं। बाबा उस समय स्थिति को सब ठीक कर देता है। तो अगर हम आपस में भी ऐसे ही रहे जैसे हर समय एक कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, हर समय दुनिया मुझे देख रही है, तो सब कुछ बदल जाएगा, हमारी वृत्ति, हमारा बोलचाल, है ना। जैसे कई बार होता है ना, आजकल तो बहुत वीडियोज लेते हैं ना हमारे क्लास का, ओम शांति भवन का, नीचे कैसे आ रहे हैं, उस समय क्या बोलते हैं, अनाउंसमेंट होती है, अभी सब ठीक ठीक ठाक बैठो वीडियो निकालने वाले हैं, राइट। फोटो के टाइम तो माना हमें पता है कि कैसे रहना होता है, हमें पता है औरों के साथ कैसे हमें व्यवहार करना है, गेस्ट के साथ हम कैसे बात करते हैं, अपनों के साथ कैसे बात करते हैं। कई बार होता है मधुबन में हम लोग 300-400 लोग हैं, रोज वही वही चेहरा देखना होता है ना, तो कभी कभी एक साधारणपन आता है, क्या रोज रोज ओम शांति कहना है, ठीक है एक बार कह दिया ना, एक साधारणता आ जाती है ना, कभी कभी जान के नहीं, विस्मृति होती है। तो ये बैलेंस हम वापस कैसे लाए, बाबा ने बहुत सिखाया है, कई सालों से बाबा ये दो शब्दों का मंत्र बार बार उच्चारते हैं। हम भारत की बात कह रहे थे तो अगर हम कहें सम्मान देना है तो सभी कहेंगे हाँ बहन जी ये तो बहुत आसान है बोलना, बड़ों को तो हम देते ही हैं, बड़े कैसे भी चले हमें देना ही पड़ता है, छोटे कैसे भी चले आज का जमाना है कुछ बोल नहीं सकते छोटों को, है ना। तो उस बात को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हर एक के पास 5% ऐसे लोग हैं लाइफ में जो हमारे टेस्ट पेपर हैं, कुछ भी हम करें, हम कितना भी अच्छा चले उनके साथ, कुछ न कुछ विघ्न रहता ही है उनके साथ, ठीक है उसको साइड में हम रखें। जिस बात पर हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सम्मान देना आसान कैसे बन जाए, अभी कभी कभी मुश्किल लगता है कैसे सम्मान दे, पहले मैं उसके फायदे देखूं। जब सम्मान मैं किसी को देती हूं तब स्पष्ट होता है कि मेरे अंदर के जो सिद्धांत है वो क्या है, मैंने अपने जीवन के मूल्य को क्या चुने हैं, वो स्पष्ट होता है। अगर मैं सम्मान दे रही हूँ माना मेरे अंदर निर्माणता है, मैंने उस आत्मा की विशेषताओं को देखी है, तो स्पष्ट मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मेरे सिद्धांत ऐसे हैं, मेरे गुण ऐसे हैं, मेरी शक्तियां ऐसे, स्पष्ट होता है। दूसरी बात, जब सम्मान की बात आती है तो हम दूसरे को उनके स्वाभिमान से चलने का एक मौका देते हैं। कभी हम किसी को करेक्ट करते हैं, किसी की बात को हम चेंज करना चाहते हैं लेकिन डांट के बोल होते हैं, कटाक्ष के बोल होते हैं और हम चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, तो भावना अंदर अच्छी है कि बदल जाए, परिवर्तन आ जाए, लेकिन निकल क्या रहा है? उस आत्मा का स्वाभिमान टूट टूट रहा है मेरे सामने, तो वो किस हिम्मत से आगे बढ़ेगा, किस हिम्मत से परिवर्तन होगा? तो ये मुझे सोचना है कि किस भावना से और किस ढंग से मैं सम्मान दे रही हूं। मैं तो कहूंगी मैंने सोचा, जिस रीति से मैंने सोचा मैं वो सम्मान दूं, मैं उनको करेक्शन दूं, मैं उनको इशारा दूं, उस व्यक्ति को समझने की भी जरूरत होती है। एक जब हम मनोविज्ञान पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो एक अच्छी रिसर्च की थी, 4-5 साल के बच्चों के जो किंडरगार्टन होते हैं, उसमें एक टीचर ने एक दिन बोला, इसके पहले दिन ही भूकंप आया था उस जगह पर। तो अगले दिन टीचर ने सोचा कि थोड़ा उसका चर्चा करें, कुछ बच्चे डर गए होंगे, कुछ बातें कुछ छुपे, मतलब बात खुल के बोल नहीं पाएंगे शायद अपने टीचर्स को या माँ बाप को। तो इस बात को निकालने के लिए सोचा कि हम एक दूसरे ढंग से उनको पूछेंगे कि भूकंप के बारे में। तो सबको बिठाया और बोला, कल किसके घर में भूकंप हुआ? तो सब ने हाथ उठाया और सब एक दूसरे को देख के आश्चर्य खा रहे थे। अच्छा, आपके घर में भी हुआ था, आपके घर में भी हुआ था? क्योंकि बच्चे की बुद्धि क्या होती है, हद की होती है। वो ये नहीं सोच सकता है कि दूसरे के जीवन में भी ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो कभी कभी अपने लाइफ में भी हम ऐसे होते हैं कि मैं जो सोच रही हूं वो राइट है, राइट भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की लाइफ, उसकी स्थिति, उसके मन बुद्धि किस स्थिति में है मुझे समझने की जरूरत होगी, इससे पहले कि मैं ठोस करूं अच्छा ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो अभी भी मेरी एक बेबी बुद्धि है, बच्चों वाली बुद्धि है, जो सिर्फ हद का ही सोच सकते हैं, लेकिन या उससे बाहर मैं निकल सकती हूँ, उसके दृष्टिकोण से, दूसरे के दृष्टिकोण से भी मैं देख सकूं। हम अपने बड़ों को देखते हैं, इतना बड़ा कारोबार संभालते हैं, मधुबन का, देश विदेश का, ये क्यों संस्था इतनी सफल रही है? क्योंकि मिलके चल के गए हैं, सबको पूछ के ही, सबकी राय लेकर ही आगे बढ़े हैं। और जो भी हमारे सीनियर्स हैं, आदि रतन हैं, महारथी हैं, सबकी ये विशेषता है, सबको पूछ के ही करेंगे। बड़ी दादी भी होती थी, कोई भी दादी जी होती है, पूछेंगे ये सब ठीक है, ये जो प्लान हम लोगों ने बनाया है ठीक है, आप लोग करेंगे, सबकी राय, सबका साथ लेके ही आगे बढ़े हैं। और जो तीसरी बात सम्मान की होती है, जैसे हमने कहा कि हम उसको आगे बढ़ाने का एक मौका देते हैं, जो हमने, हमारे बड़ों ने बहुत किया है यज्ञ में। हम सब आए, सभी सेंटर पर आए या मधुबन में आए, तो कच्चे थे, है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैसे सेवाएं करनी है, कैसे ज्ञान सुनाना है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन किसी बड़े ने हम में विश्वास रखा था कि आप कर सकते हो, है ना, सबकी ये अनुभव होंगी। हम अकेले नहीं चल सकते हैं इस जीवन में, इस पथ पर, जब तक कोई हम में, हमारे अंदर विश्वास ना पैदा करे। और सिर्फ बड़े नहीं कर सकते, हम सब एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, छोटे से छोटे कोई कार्य हो या बड़े से बड़े। जब हम सम्मान की बात करते हैं, कभी कभी हम सिर्फ ये सोचते हैं कि दूसरों को हम सम्मान कैसे दें, लेकिन कई बार अपने निज जीवन में भी मुझे रिस्पेक्ट रखना है। हम अपने शरीर की बात करते हैं, कैसे हम इसको चला रहे हैं, कैसे स्वच्छ रखते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी भी रिस्पेक्ट, इसका भी सम्मान हमें रखना है। हम जिस जगह पर रहते हैं, हमारा कमरा, हमारा घर, यहाँ तो आप लोग बेहद में रहते हैं, 10-15 के साथ रहते हैं, बहुत बड़ी बात है सच में। विदेशी आते हैं बहुत मनाना पड़ता है, कोई बात नहीं, सब शांति से रहेंगे, 15 लोग हो तो क्या हुआ, बड़ा परिवार है, सुखी परिवार रहेगा, बहुत मनाना पड़ता है। और आप लोग आसानी से रह जाते हो ना, हाँ थोड़ी बहुत घिटपिट होती होगी, बट संभाल लेते हो सब कुछ। तो जो जिस जगह पर हम रहते हैं वो कितना साफ स्वच्छ है, वाइब्रेशंस भी और स्थूल रूप से भी, क्योंकि हमारा जो एरिया है शरीर के आसपास, हम कितना उसमें लोगों का स्वागत करते हैं, या कितना उनको, नहीं आप दूर ही रहो मुझसे। जैसे एक सेंटर है विदेश में, वहां तो कम ही लोग होते हैं सेंटर निवासी, तो एक एक घर में एक एक कमरे में एक एक रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या नियम बनाया है कि कमरे में दूसरा भी पलंग है, तो कभी भी कोई भी आए, गेस्ट आए, उनकी अपनी बहनें आए, कोई भी आए, उनको ये ना लगे कि ये कमरा कैसा है, हम कैसे रह सकते हैं। क्या होता है, यहां भी होता है, विदेशी भी कई बार कंप्लेन करते हैं, हम गए कमरे में लेकिन हर तकिए पर कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है कौन सा तकिया खाली है, ना कौन सा खटिया खाली है, राइट। तो माना हम उस व्यक्ति को लगा कि मैं इसमें वेलकम ही नहीं हूं, इस कमरे में मेरी कोई जगह ही नहीं है। तो एक बहुत सूक्ष्म बात है। तो इस सेंटर पर भी ऐसा ही था, कभी भी आप देखो दूसरा पलंग ऐसे ही रहेगा, लोग आए या ना आए ऐसा ही रहेगा, जैसे आएगा तो आपकी स्वागत है। बहुत सूक्ष्म बात है। एक बात हंसी की बात बताती हूँ। कुछ मास पहले हम लोग नीचे जा रहे थे, दो तीन लोग गाड़ी में थे, और एक भाई को नीचे जाके टिकट बनवाना था, यहाँ नहीं बन रहा था। तो भाई इतना मीठा था, बहुत आदर से बात कर रहा था, थैंक यू आप, मुझे यहाँ नहीं हो रहा था ये वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि उस भाई के जो शरीर से ना अलग से ही एक खुशबू आ रही थी। अब ये बातें क्लास में ऐसे बनाती हैं, बताना नहीं होता है, लेकिन कई बार होता है हमें खुद को नहीं पता कि हम क्या वाइब्रेशंस फैला रहे। इतना अच्छा भाई था, लेकिन उसको शायद खुद भी नहीं पता था कि कैसे सुगंध अच्छा शब्द, रॉयल शब्द मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप मानो पूरा जो रास्ता 40 मिनट का था, मैं नाक बंद करके बैठी, इतना मुश्किल हो रहा था सांस भी लेना, खिड़कियां भी नीचे रखी डाली थी, लेकिन हम लोगों ने उसको बाहर नहीं निकाला गाड़ी से, हमने ये नहीं कहा अच्छा ठीक है आप बस में जाओ ये वो, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट होता। कई बार होता है हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और लोगों को क्या महसूस हो रहा है, तो ये भी एक रिस्पेक्ट की बात होती है। दादी जानकी को मैं काफी सालों से जानती हूँ, और जब काफी हेल्दी थी सब कुछ, जैसे कुछ दिन पहले ही बाबा ने बोला, शायद कल ही बोला था कि जनक बच्ची किसी से सेवा नहीं लेती है, और शिलू दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया और सही सुनाया कि जब तक दादी 80 साल की नहीं थी उनके साथ कोई परमानेंट सदाकाल कोई ब्राह्मणी नहीं रहती थी। वो जिद बड़ी दादी ने बहुत फोर्स करके बोला कि जब उनका कुछ हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी तब जाके उन्होंने रखा कि अच्छा 24 घंटे कोई रहे हमारे साथ। दादी को हमने उस समय जब दादी बहुत फिट थी उस समय मैंने देखा जहां भी वो रहती थी। अभी भी आप दादियों के कमरे जाएं हम सोचेंगे अच्छा इनके पास तो ब्राह्मणियां ढेर सारे होंगे, भाई लोग ढेर सारे होंगे, वो लोग ही सब कुछ ठीक ठाक रखते होंगे, साफ स्वच्छ रखते होंगे। ऐसा नहीं है। दादियों को अब देखो अभी भी सब जगह नजर जाती है, क्या कुछ है, कुछ ऐसी चीज तो नहीं रखी है, पर्दा ठीक से रखा है कि नहीं, क्या जरूरत है उनको इतनी बारीकी से, इतनी महीनता से अपने जो स्पेस है, जो जगह हमारे आसपास है, उसको भी खूबसूरत करने की क्या जरूरत है। सिंपल रहता ही है लेकिन सब कुछ अच्छे से रखा हुआ होता है। अभी भी देखेंगे, अभी भी ध्यान जाता है ठीक है कि नहीं। तो ये होती है राजा महाराजाओं के संस्कार, है ना। तो हम लोग अपने आप को भी चेक करें, हम कितना इतनी बारीकी से अपने शरीर को, अपनी जगह को, अपने आसपास लोगों को इतना सम्मान देते हैं। जब हम दादियों को आज देखते हैं और जो हम 15 साल 20 साल पहले देखा है, कईयों ने देखा होगा, तो नेचुरली तबीयत में काफी अंतर आ गया है। कभी कभी बहुत दुख होता है जब लोग बोलते हैं दादी जी की क्लासेस तो ऐसी हैं, अभी तो रिपीट करती रहती हैं। किसी भी दादी के लिए आप बोलो, हम किसके लिए बोल रहे हैं, हम किस हस्ती के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि वो रिपीट कर रही है। ठीक है, शरीर ऐसा नहीं है जैसा पहले था, तो बना हमारा रिस्पेक्ट भी हमारा सम्मान भी कम हो जाए अपने दादियों के लिए, अपने बड़ों के लिए? नहीं होना। कई लोग बाप दादा के लिए भी बोलते हैं, कितनों कितनों से हमने सुना है, अरे वहां आराम से टीवी पर हम बैठ के देखेंगे, इतनी दूर हम आते हैं, इतनी तकलीफ लेते हैं, दो तीन दिन हम ट्रैवल करके आते हैं, और फिर डायमंड हॉल में कहाँ बैठना होता है, 10 मील दूर, है ना? बाप दादा इतना दिखते हैं, है ना? बहुत साल पहले हम छोटे ब्राह्मण थे, उस समय हम बहुत दूर रहते थे भारत से, 3000 मील दूर। वहां से आने के लिए 2 दिन लगते थे और मधुबन फिर 1 और दिन लगता था। उस समय उस पूरे प्रांत में 1 भी बीके नहीं था। तो जब अकेले में आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्या पुरुषार्थ होता था पता ही नहीं था, लेकिन नेचुरली हमें महत्व समझ में आता है कि संगठन क्या होता है, मधुबन क्या होता है, सेंटर में जाना कितना जरूरी होता है। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप में से कोई भी ऐसे दौर से गुजर रहे जो आपको 1 बीके भी नजर ना आए। तो हमने कहा ना पहले, भारत वाले बहुत लकी, पहले कभी कभी लगता है ये इतनी भीड़ में बाबा ने बिठा दिया है ना? कभी कभी दिन में भी जब पार्टी आती है तो हम लोग सीख जाते हैं ना गेम, कैसे यहाँ ऐसे ऐसे घूमना होता है। कोई बात नहीं, भले हजारों आए, हम भारत वालों में ये विशेषता है समाने की। तो बहुत गर्व से अपने आप को देखें कि बाबा ने आपको कहाँ रखा है और किस लिए रखा है। एक दूसरा सम्मान की बात आती है तकनीकी की, विज्ञान की। विज्ञान की दुनिया बन गई है और हम क्या कहते हैं, मुरली तो मिलती है ना, क्लासेस तो मिलते हैं। तो ठीक है, हमारे और भी जरूरतें हैं, और भी हमारा टाइम टेबल है, ये करना है वो करना है, मुरली में ठीक है पढ़ लेंगे। जैसे फिर से मैंने कहा, जब कोई नहीं होता है आपके सामने, कोई 1 बीके भी नहीं होता है, कोई मुरली सुनाने वाला प्यार से सुनाने वाला नहीं होता है, तब समझ में आता है। जब तक हम ये भाग्य लूट सकते हैं सन्मुख किसी से मुरली सुनने का, सन्मुख ज्ञान की चिटचाट करने का, तो हम पूरा उसका लाभ लें। हम दादी जी की भी बात, दादी गुलजार की भी बात, एक बहुत सुंदर बात सुनाना चाहते हैं। एक बहन ने हमें एक बार सुनाया, अव्यक्त बाप दादा तो सीजन में 8 बार आते हैं, पहले 10 बार 11 बार आते थे। तो जब भी बाबा आए, हम मधुबन में हैं, हम अपने सेंटर्स पर हैं, तो किस नशे से या किस लगन से हम उस दिन की तैयारी करते हैं, ये भी एक बहुत सूक्ष्म रिस्पेक्ट होता है। गुलजार दादी जी की बात है, वो तो खुद बाबा के रथ हैं, तो हमें तो लगेगा वे तो 40-50 साल से तो वही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो चुटकी भर का काम है। लेकिन अभी भी दादी जी इतने नियमित रूप से उस दिन की तैयारी करती हैं, अपने मन को बहुत शांत एकाग्र रखती हैं, किसी से ज्यादा बातें नहीं करती उस दिन। आप में से कितने हैं जो बाप दादा के दिन अव्यक्ति दिवस पर ऐसे करते हैं? करते होंगे डेफिनेटली। जब हम छोटे होते थे मधुबन में आते थे तो 2-3 दिन का ही टाइम मिलता था, क्योंकि बंधन थे घर पे, तो ज्यादा रहने को नहीं मिलता था। तो कितने लगन से मौन रखना है, मौन रखना है। आजकल बहुत मुश्किल से लोग मौन रखते हैं बाबा के दिन। सच्ची बात है ना? क्यों क्यों ये परिवर्तन आ गया है? सब कुछ देख लिया, सब कुछ अनुभव कर लिया बाप दादा से, वो चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी शांत स्वरूप है, वो अभी भी उस एकाग्र रूप में आते हैं। इस लास्ट मुरली बीजी 5 तारीख की मुरली जो हमने सुनी, कई लोग ऐसे हंसी मजाक में बोल रहे थे, देखो बाबा को पता भी नहीं है 18 जनवरी नहीं है। ये भी एक सूक्ष्म रिस्पेक्ट की बात है, किसके लिए हम बोल रहे हैं? वो कुछ भी बोले भगवान, कुछ गलत है उनके बोलने में। मैंने जो लिया उस मुरली से कि किस नशे से बाबा बता रहे थे कि वो जो पहला मिलन था, पहला अव्यक्ति मिलन, क्या वाइब्रेशंस थे उस समय के। और भले हम नहीं थे 1969 में, हम इस शरीर में भी नहीं थे उस समय, लेकिन अभी भी हम उस अनुभव को दोहरा सकते हैं। और ये मैंने अपने लिए लक्ष्य रखा कि जब भी बाप दादा आए मुझे ऐसे ही मिलना है जैसे वो पहला मिलन था। तो एक नवीनता आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि अच्छा वही वही हम कर रहे हैं, वही वही मिल रहे हैं। तो छोटी छोटी सम्मान की बातें, इस पर चिंतन चल रहा है, इस पर हमारा फोकस चल रहा है। जब से हम यहाँ आए मधुबन में, तो सबसे ज्यादा पता है हमने क्या देखा है? अंतिम संस्कार। क्योंकि कितनी आत्माएं इन 15 सालों में गई हैं, अव्यक्त हुए हैं, और भी महान रोल, महान पार्ट बजाने के लिए गए हैं। और मेरे एक लगन पहले से रही है कि भले हम उस आत्मा को जाने या ना जाने, हाजिर रहना है। क्योंकि बहुत बड़ा भाग्य है कि मधुबन से कोई जाता है अंतिम संस्कार, कईयों ने देखा होगा, बहुत सुंदर रीति से, भले लंबा चलता है लेकिन बहुत सुंदर रीति से हमारे बड़े अभी तक वो प्रथा चले, उस प्रथा को निभा रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है उस अंतिम संस्कार या लास्ट के दिन जो होते हैं किसी के, जो बाबा बोलते हैं ना, अंतमते सुगति, तो वो उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी है कि मैं अपनी लाइफ अभी कैसे जीऊं। क्योंकि वो लास्ट के दिन भी अच्छे रहे, उस समय के लिए भी मुझे सम्मान देना है, और अभी मैं दूंगी तो लास्ट में वो भी सुंदर रहेगा। और सबसे सुंदर, सबसे भव्य जो अंतिम संस्कार रहा हुआ था वो है बड़ी दादी का, दादी प्रकाशमणि जी का, जो 2007 में है। आप में से किस कोई थे उस समय, पार्टी में आए थे? बहुत ही, किसी को जाना हो तो ऐसे जाना है। बहुत ही महान हस्ती थी बड़ी दादी, अभी भी हैं, अभी भी हमें पालना दे रही हैं। उनके जाने से बहुत कुछ राज खुले ड्रामा के, उसमें तो नहीं जाती हूँ, लेकिन दादी का ये महामंत्र, सम्मान स्वमान में रहना और सम्मान देना, ये लास्ट में दादी जी ने हम सबको वो एक गिफ्ट दी है। और दादी का जाना भी इतना सुंदर रहा, भले बीमारी 2-3 साल तक रही, लेकिन दादी जी इतनी उपराम रह सकी क्योंकि उन्होंने इतने हजारों लाखों आत्माओं की दुआएं ली थी। कई भाई बहनें जो बड़े मधुबन के बुजुर्ग हैं और बड़े हैं, वो सुनाती थी कैसे अगर दादी जी का किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, उनको किसी को शिक्षा देनी होती, तो क्या होता है जब कुछ अनबन होती है किसी के साथ, हमें लगता है अच्छा कुछ दिन उनसे दूर ही रहे ना, थोड़ी शांति हो जाएगी तब बाद में बात करेंगे। बड़ी दादी ऐसे करती थी, अगले ही दिन अगर वो आत्मा थोड़े उनको से दूर जा रही हो, खास उनको बुलाएंगी, अच्छा कैसे हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या जरूरत है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इतना निर्माण होके रहना, बट किया है, कई आत्माओं को ऐसे ही बचा के रखा है, सम्मान दे के। तो इसलिए हमने उसका फलस्वरूप देखा, लास्ट के दिन 10,000 आत्माएं आई शांतिवन में, और एकदम इतनी शांति थी शांतिवन में। आप कभी देखा हो कि नहीं पता नहीं, शांतिवन हमेशा हम लोग जाते हैं जब बड़ी संख्या होती तो आवाज ही आवाज होता है, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा। दादी जैसी अपनी लाइफ को जीती रही वैसे ही अंत तक ऐसे ही चला। 3 दिन दादी के रथ को वहां नीचे रखा गया, और एक ही बार हम गए थे लास्ट, जैसे रिस्पेक्ट देने का। हमें पता ही नहीं था दादी जी का वो रथ कहाँ रखा हुआ है, सबको लाइन में चांस मिलता था कि जाके दादी को लास्ट दर्शन लेके फिर बाहर आए, और दिन और रात वो लाइन चलती रहती थी। दादी अभी तक शरीर में ही थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो कभी भूलता नहीं है, जब सामने गए मुश्किल से 2-3 सेकंड ही, क्योंकि लाइन इतनी लंबी होती है, आप ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, और मैं इतनी अच्छी स्थिति, ऊंची स्थिति में भी नहीं थी जो कुछ खास ले सकूं, लेकिन जैसे मैंने जैसे दादी को आखिर विदाई या गुड बाय कहा, और जैसे मैं वहां से गई, इतना अशरीरपन का अनुभव मैंने उस समय किया जो शायद लाइफ में कभी नहीं किया हो। दादी जी कोमा में थी उस समय, राइट, आत्मा थी शरीर में, फिर भी वो इतनी शक्तिशाली अनुभव किसी को दे सके, मैं हैरान थी। उस पल के बाद मैं आधा घंटा कॉटेज में बैठी रही, और पूरा टाइम ऐसे ही था जैसे मैं शरीर में हूं और नहीं हूं। जैसे कुएं से आप गिरो और डर भी ना लगे कि कुछ हो जाए, ऐसे बस बेहद में मैं उड़ रही हूं। ये अनुभव ऐसा भी नहीं था कि बड़ी दादी के साथ हमारा बहुत खास संबंध था या कुछ रिश्ता था इसलिए कुछ खास देकर गई थी, नहीं, दादी की दृष्टिकोण हमेशा बेहद में रही, हमेशा देने की भावना रही, और वो 2-3 दिन वो पूरा परिवार को एक करके गई, सिर्फ अपना जो ये नियम, एक मंत्र उसने अपने लाइफ का बनाया, स्वमान में रहना, सम्मान देना। तो हमने प्रैक्टिकल प्रूफ देखा है। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये ऐसे होता नहीं आज की दुनिया में, आप कुछ भी करो लोग उल्टा ही लेंगे या फायदा ही लेंगे, ये बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारे सामने प्रूफ है, प्रमाण है। तो हमने भी ये पुरुषार्थ जारी रखा है, और जैसे बड़ी दादी गई, हम यही आश रखते हैं कि सभी ऐसे अनुभव करें कि लाइफ के अंत तक हम ऐसे ही निर्बंधन होके रहे। अभी हम 10 मिनट खास एक अशरीरपन में बैठे, सभी बैठेंगे साथ में, बताओ शरीर का नाम उर्वशी है, और हम दुबई में 2 बार जन्म हुए, एक बार शरीर ने जन्म लिया, एक बार बाबा मिले, माताजी ज्ञान में पहले आई, हम 12 साल के थे और अभी 27 साल हो रहे हैं। तो स्कूल में चलते चलते बंधन काफी थे माताजी को भी और हमें भी, लेकिन हम ज्यादा उस पर जाते नहीं है, क्योंकि अभी जो बंधन डालते थे वो भी अभी ज्ञान में चलते हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता ज्यादा उस दौर की बात करना। लेकिन माताजी हमें एकलव्य बुलाती है, क्योंकि सेंटर पर जाना मना था, और थोड़ा बहुत जो माताजी सीखती थी वो टुक टुक करते हमें भी सिखाती थी, और बस लाइफ काफी दौर से गुजरी है, काफी बंधन भी थे, विघ्न भी थे, लेकिन आज अगर उस समय आप बोलते थे कि एक दिन आप मधुमेहवासी बन जाते तो मैं बहुत हंसती क्योंकि नामुमकिन था, नामुमकिन। हम यही कह रहे थे कि बड़ों के साए में हम काफी साल रहे हैं और बहुत सीखा है बड़ों से, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ पुरुषार्थ अलग से किया हो। वो सोच नहीं सकते थे कि ये लाइफ चुननी भी है, वो चांस ही नहीं था हमारे पास। लेकिन बहुत जल्द, जब मैं 13, 14, 15 साल की थी, उस समय बाबा ने सखापन का जो अनुभव है बहुत गहराई से करवाया, और बहुत जल्दी निश्चय हुआ कि अगर कोई साथी हो सकता है तो यही बाबा है। लेकिन ज्ञान की गहराई, अमृत वेला भी करना बहुत मुश्किल होता था, डर डर के उठ के बैठते थे, क्या करते थे उस समय पता ही नहीं था, लेकिन उठना है तो कई बातें चुप चुप के करते थे, इसलिए वो आदत हो गई है कि गुप्त ही रहना है। तो निश्चय, आई थिंक अगर हम सच में बोले तो रोज निश्चय पक्का होता जा रहा है, 27 साल के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% है, लेकिन दुआओं से चलना मुझे बहुत अच्छा आता है दुआएं लेना सबसे, और उसके बलबूते पर चलना मैंने बहुत जल्दी सीखा है, और उसी से गाड़ी आगे जा रही। थैंक यू आप सबको, इससे ठंडी मौसम में हम सब बैठे रहे। थैंक यू। खास यही था सम्मान और सम्मान में रहने का। हम काफी बड़े उसके साथ रहते हैं, तो जो बड़े हम स्टेज पे देखते हैं जरूर शक्तिशाली हैं, और ऐसा लगता है उनकी लाइफ जैक के तो इन्हें तो आसानी से सब कुछ पार कर लिया होगा, क्योंकि उनकी स्थिति अभी ऐसी बन गई है जो सब कुछ आसान लगता है। सब कुछ कुछ भी नामुमकिन नहीं है अपने लाइफ में, लेकिन हम नज़दीक से भी देखते हैं, कई बार उनके लिखा पढ़ी का भी हम देखते हैं ऑफिस में। तो जब हम सम्मान और सम्मान की बात करते हैं, कितने, चलो 80% लोग, 80% वीकेज, 80% कॉन्टैक्ट सोल्स तो सम्मान देते ही हैं अपने बड़ों को, लेकिन 20% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही हम ये नहीं कहेंगे अपमान करते हैं, लेकिन बहुत चैलेंजेस अपने बड़ों के सामने रखते हैं। और हमने बहुत बहुत बार देखा है कुछ भी हो जाए हमारे बड़े हिलते नहीं हैं। उनके मुख से अपशब्द, उनके मुख से गुस्से के भी शब्द नहीं निकलते। हमने दादियों को देखा है, निर्भय भाई साहब को देखा है, जयंती बहन को देखा है। मुझे तो बहुत बार आता है मुझे तो बहुत बार आता है। लेकिन ये जो दीदी पूछ रही हैं कि पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, बड़ों को देख के ये लगता है कि ठीक है, कई बार उनको भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कई बार मैं बोलती भी हूँ अपने बड़ों को, आपको तो कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था। कई बार लगता है कि इस आत्मा को, इस जो ये जो संसार है ना, इससे निकाल के कहीं और ही डाल दूं, चांद पे डाल के छोड़। कभी कभी ऐसे भी आत्माएं सामने आती हैं। और आजकल ऐसा होता है, जो लोग सामने आते हैं बड़ों के, पहले होता था जमाना कि छोड़ के जाते थे यज्ञ को, अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है छोड़ के जाते थे। आजकल ऐसा नहीं है, यज्ञ में बैठ के सेंटर पर आग के फिर भी अपना काम करते रहते हैं, जो हमेशा श्रीमत अनुसार नहीं होता है। तो ऐसे हालत में भी मैं अपनी भावनाएं चेंज ना करूं, जो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन मैंने ये एक पुरुषार्थ किया कि मुश्किल शब्द मुझे डिक्शनरी से निकालना है। एक सल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का एक समाधान है, इतना मैंने निश्चय बना लिया है अपने लाइफ में। मुझे उस समाधान को ढूंढना है। अगर समाधान ना भी मिले तो उस आत्मा के प्रति, अभी तो लास्ट में हमारे सबसे बड़े जो कार्मिक हिसाब किताब हैं बीकेस के साथ ही हैं, जो कि 84 जन्म उनके साथ ही रहे हैं, तो अगर मैं समाधान ना ढूंढ सकूं, अगर मेरा संकल्प उनके संकल्प से मिल नहीं सकता, कम से कम मेरे दिल में डिसरिस्पेक्ट ना रहे, कम बेसिक, सबसे कम मुझे उस आत्मा को रिस्पेक्ट ये देना है कि वो भगवान का बच्चा है। और मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, कई लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, माफी भी मांगते हैं, फिर भी बड़ों के पास आते हैं, लेकिन उनका काम है। भाई साहब हमेशा हम बोलते हैं, निर्भय भाई साहब, कि वो अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी कारण से, संस्कारवश, तो मैं क्यों चेंज करूं अपने आप को, मैं अपने संस्कारों को क्यों बदलूं। तो ये बहुत सीखने को मिला है बड़ों से। तो ये हमारा इस समय का पुरुषार्थ है कि अगर मैं किसी सीन को चेंज कर सकती हूँ, उसको और बेहतर कर सकती हूँ तो करूँ, नहीं कर सकूँ तो कम से कम बुरा ना करूँ, रिस्पेक्ट रखूँ। थैंक यू। मेरे लिए एक घंटा भी बोलना बहुत ही मुश्किल है इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली बार बताएंगे, नहीं योग करेंगे ना, सबको कमरे में जाना है, सोना है, कई बातें होती है ना रात को। मैं कोई अपेक्षा नहीं रखती हूँ, सच में मैं निराश होके नहीं बोल रही हूँ कि अभी इस परिवार से कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। नहीं, आपने क्लास नहीं सुना है इतनी बढ़िया क्लास हमने सुना है। आई थिंक हमें आपसी का जो सम्मान है वो थोड़ा बेहतर बनाना है, एक दूसरे को देखने की दृष्टिकोण थोड़ी साधारण बनती है कभी कभी। तो ये आसान हो जाए तो अंदर की जो अपने संस्कार हैं, जो बहुत डीप रूटेड है, बहुत जिद के हैं या बहुत कट्टर हैं, हमें लगता है कि ये कब चेंज होंगे। दूसरों को सम्मान देने से बाबा एक गिफ्ट देता है हम लोगों को, क्योंकि हमने श्रीमत पर अपना कार्य किया, सम्मान दिया किसी को, तो बाबा हमें अपने पुरुषार्थ में हेल्प बहुत करता है। ये मैंने बहुत बार देखा है। तो ये जवाब है। वेट प्लीज। हमारे भाई जी, कम से कम दृढ़ता सीखनी हो तो भाई जी से सीखनी है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कम हफ्ते में एक बार तो बोलते ही हैं, अच्छा क्लास रखें क्लास रखें। तो मैंने सोचा कर्मातीत बनने के लिए मुझे इनका उलाना तो दूर करना ही होगा, इसलिए आज आपसे सबसे मिल रहे हैं। अभी तो कर्मातीत बनने वाली हूँ, पूरा हो गया। थैंक यू आप सभी को, सच बहुत अच्छा लगा। Thank you.